नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0। गाई कावासाकी की उद्यमिता और नए उपक्रम शुरू करने पर केंद्रित व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह मूल पुस्तक का विस्तारित और अद्यतन संस्करण है, जिसमें स्टार्टअप जगत के साथ सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग और क्लाउड आधारित ढांचे जैसे अपेक्षाकृत नए साधनों को शामिल किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य केवल कंपनी पंजीकृत करने की प्रक्रिया बताना नहीं है, बल्कि किसी उत्पाद, सेवा, सामाजिक पहल या संगठन को विचार से वास्तविक प्रयोग तक ले जाने की सोच विकसित करना है। कावासाकी का केंद्रीय आग्रह है कि उद्यमी होना पदनाम नहीं, बल्कि समस्याओं को पहचानकर उपयोगी समाधान बनाने की प्रवृत्ति है। पुस्तक विचार की सार्थकता, छोटा लेकिन स्पष्ट आरंभ, ग्राहकों से सीखने, टीम चुनने, पिच बनाने, बिक्री और समुदाय निर्माण जैसे विषयों को जोड़ती है। इसका स्व सीधा अनुभव आधारित और कार्रवाई उन्मुख है, हालांकि इसके अनेक उदाहरण निवेश पाने वाले तकनीकी उपक्रमों की दुनिया से आते हैं। इसके मूल सिद्धांत उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो किसी नए उत्पाद, गैर लाभकारी पहल या संगठनात्मक परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लाभ से पहले सार्थक समस्या हल करने का सिद्धांत। कावासाकी के अनुसार किसी नए उपक्रम की शुरुआत का सबसे मजबूत आधार केवल पैसा कमाने की इच्छा नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण मूल्य बनाना है। वे पाठक को यह पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि उसका उत्पाद या सेवा लोगों की स्थिति को कैसे बेहतर करेगी, किसी कठिनाई को कैसे कम करेगी या किसी पुराने काम को उल्लेखनीय रूप से बेहतर कैसे बनाएगी। यह दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल बाजार के आकार या प्रतिस्पर्धियों की नकल से बनी योजनाएं अक्सर अलग पहचान खो देती है। सार्थकता का अर्थ यह नहीं कि हर उद्यम को विशाल सामाजिक परिवर्तन का दावा करना चाहिए। इसका अर्थ है ग्राहक के लिए एक स्पष्ट और वास्तविक लाभ तय करना। इसी आधार पर संस्था का छोटा याद रहने वाला मंत्र बनाया जा सकता है। मंत्र लंबे मिशन वक्तव्य से अलग टीम को रोजमर्रा के निर्णयों में दिशा देता है। जब उत्पाद की विशेषताएं, मूल्य निर्धारण, भर्ती और संचार एक ही मूल उद्देश्य से जुड़े हों तो संगठन अधिक सुसंगत दिखाई देता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि संस्थापक को अपने ज्ञान, ग्राहक की आवश्यकता और अपनी वास्तविक रुचि के मिलन बिंदु को पहचानना चाहिए। यही मिलन बिंदु अवसर और क्षमता के बीच संतुलन बनाता है। इस तरह अर्थपूर्ण शुरुआत भावनात्मक नारा नहीं रहती, बल्कि उत्पाद चयन, प्राथमिकता निर्धारण और बाजार में स्थान बनाने का निर्णयकारी ढांचा बन जाती है। दूसरा, पूर्णता की प्रतीक्षा छोड़कर शुरुआती संस्करण और ग्राहक परीक्षण। पुस्तक का एक प्रमुख तर्क है कि नई पहल को अत्यधिक योजना और पूर्णता की खोज में रोकना खतरनाक हो सकता है। कावासाकी पहले काम शुरू करने, वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच में और प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार करने की सलाह देते हैं। इसका अर्थ लापरवाही से अधूरा उत्पाद बेच देना नहीं है। आशय यह है कि संस्थापक को उन तत्वों पर जल्दी काम करना चाहिए जिनसे पता चले कि प्रस्तावित समाधान के लिए वास्तविक मांग है या नहीं। आरंभिक संस्करण अक्सर असुविधाजनक, सीमित या कुछ हद तक शर्मिंदगी पैदा करने वाला हो सकता है, लेकिन वह अनुमान के बजाय वास्तविक सीख देता है। इस दृष्टिकोण में भुगतान करने वाले ग्राहक विशेष महत्व रखते हैं। ग्राहक का भुगतान केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि समस्या की गंभीरता और समाधान के मूल्य का प्रमाण है। इसलिए पुस्तक उस प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाती है जिसमें संस्थापक लंबी व्यवसाय योजना, अनुमानित बाजार आकार और निवेशक प्रस्तुति पर बहुत समय देते हैं, पर ग्राहक से पर्याप्त संवाद नहीं करते। कावासाकी की सलाह है कि विचार को अधिक लोगों से साझा कर प्रतिक्रिया ली जाए, क्योंकि गोपनीयता का अत्यधिक भय अक्सर उपयोगी आलोचना से वंचित कर देता है। यह तरीका अनिश्चितता समाप्त नहीं करता, लेकिन गलत धारणाओं को जल्दी सामने लाता है। सीमित संसाधनों वाले नए उपक्रम के लिए यह गति और सीखने का महत्वपूर्ण लाभ है। तीसरा, मैट ढांचे से मील के पत्थर धारणाएं। परीक्षण और कार्यों की प्राथमिकता, कावासाकी का मैक ढांचा अर्थात माइलस्टोन्स, असम्पशंस, टेस्ट्स और टास्क्स। नए उद्यम को बिखरे हुए कामों और आकर्षक लेकिन गैर जरूरी लक्ष्यों से बचाने का साधन है। मील के पत्थर वे ठोस परिणाम है जिनसे प्रगति मापी जा सके, जैसे कार्यशील नमूना, क्षेत्र में परीक्षण योग्य संस्करण, पहला भुगतान करने वाला ग्राहक या नकदी प्रवाह का संतुलन। इनके बिना टीम व्यस्त तो रह सकती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वह व्यवसाय को आगे बढ़ा भी रही है या नहीं। दूसरा भाग धारणाएं हैं। हर योजना कुछ अनुमानों पर खड़ी होती है, जैसे ग्राहक संख्या, बिक्री चक्र की अवधि, सकल मार्जिन या बाजार तक पहुंच की लागत। इन धारणाओं को तथ्य मान लेने के बजाय स्पष्ट लिखना आवश्यक है ताकि उनकी जाँच हो सके। तीसरा भाग परीक्षण है, जिसमें संस्था निर्णायक प्रश्नों के ईमानदार उत्तर ढूंढती है। उदाहरण के लिए, क्या लक्षित ग्राहक वास्तव में भुगतान करेगा और क्या बिक्री प्रक्रिया अनुमान से अधिक लंबी है। चौथा भाग कार्य है। प्रत्येक कार्य का संबंध किसी मील के पत्थर, धारणा या परीक्षण से होना चाहिए। जो कार्य इनमें से किसी को आगे नहीं बढ़ाता वह प्राथमिकता नहीं है। इस ढांचे की शक्ति इसकी सादगी में है। यह संस्थापक को बताता है कि गतिविधि और प्रगति अलग बातें हैं तथा सीमित समय और धन को प्रमाण जुटाने वाले कामों पर लगाना चाहिए। चौथा, पिचिंग में 10-20-30 नियम और स्पष्ट संचार की अनुशासनात्मक भूमिका। द आर्ट ऑफ द स्टार्ट 2.0 में पिच को केवल निवेश जुटाने का प्रदर्शन नहीं माना गया है। पिच वह अवसर है जिसमें संस्थापक ग्राहक, भागीदार, कर्मचारी या निवेशक को शीघ्र समझाता है कि समस्या क्या है, समाधान क्यों उपयोगी है और आगे का रास्ता क्या है। कावासाकी का प्रसिद्ध 10-20-30 नियम इस संचार को अनुशासित करता है। प्रस्तुति में लगभग 10 स्लाइड हो, उसे 20 मिनट में समझाया जा सके और सबसे छोटा फॉन्ट 30 पॉइंट हो। नियम का उद्देश्य हर परिस्थिति में यांत्रिक रूप से यही संख्या लागू करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य प्रस्तुति को सीमित, पठनीय और श्रोता केंद्रित रखना है। छोटी फॉन्ट में भरे हुए स्लाइड अक्सर इस बात का संकेत है कि वक्ता अपनी बात को प्राथमिकता देकर स्पष्ट नहीं कर पाया है। संक्षिप्त प्रस्तुति संस्थापक को बाजार, समस्या, समाधान, व्यवसाय मॉडल, प्रतिस्पर्धा, टीम और आवश्यक संसाधनों जैसी बातों में अंतर समझाने के लिए मजबूर करती है। पुस्तक आरंभ के कुछ क्षणों की अहमियत भी रेखांकित करती है क्योंकि श्रोता तेजी से निर्णय बनाते हैं। इसलिए प्रभावी पिच सजावटी शब्दों से नहीं, स्पष्ट समस्या, विश्वसनीय प्रमाण और सरल भाषा से बनती है। यह सिद्धांत आंतरिक बैठकों पर भी लागू होता है जहां अस्पष्ट संचार निर्णयों को धीमा और टीम की ऊर्जा को बिखरा सकता है। अंत में जुनूनी टीम, अपनाने की कम बाधाएं और प्रचार के बजाय समर्थक समुदाय कावासाकी के मजबूत उपक्रम को अकेले संस्थापक की उपलब्धि नहीं मानते। वे ऐसे लोगों की भर्ती पर जोर देते हैं जो मिशन के प्रति संक्रमित हों, अर्थात जिनमें काम और उद्देश्य के लिए वास्तविक उत्साह हो। कौशल आवश्यक है लेकिन केवल प्रभावशाली बायोडाटा पर्याप्त नहीं। आरंभिक टीम को अनिश्चितता, सीमित संसाधनों और लगातार बदलती प्राथमिकताओं में भी काम करना पड़ता है। इसीलिए पुस्तक भर्ती में व्यक्तिगत भरोसे और साथ काम करने की संभावना को महत्व देती है। तथाकथित शॉपिंग सेंटर टेस्ट इसी मानवीय पक्ष को उभारता है। विचार यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को अनायास देखकर उससे मिलने की सहज इच्छा नहीं होती तो संबंध और सांस्कृतिक अनुकूलता पर फिर से विचार करना चाहिए। बाहरी बाजार के लिए कावासाकी अपनाने की बाधाएं घटाने की बात करते हैं। श्रेष्ठ उत्पाद भी असफल हो सकता है यदि उसे समझना, आजमाना, खरीदना या बदलना कठिन हो। इसलिए सरल उपयोग, कम जोखिम और आसान पहुंच को उत्पाद रणनीति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रचार के संदर्भ में वे पारंपरिक विज्ञापन पर निर्भरता से अधिक इवेंजलिज्म को महत्व देते हैं। इवेंजलिज्म का अर्थ है ऐसे ग्राहकों और समर्थकों का समुदाय बनाना जो अनुभव से प्रभावित होकर स्वेच्छा से उत्पाद की सिफारिश करे। सोशल मीडिया इस संवाद को व्यापक बना सकता है पर समुदाय का आधार फिर भी उपयोगी उत्पाद और भरोसेमंद संबंध ही रहता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो किसी विचार को व्यवस्थित पहल में बदलना चाहते हैं, विशेषकर पहली बार के संस्थापक, छोटे व्यवसाय के मालिक, उत्पाद प्रबंधक, गैर लाभकारी संगठन बनाने वाले लोग और अपनी संस्था के भीतर नई पहल शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह प्रेरक घोषणाओं से आगे बढ़कर आरंभिक निर्णयों के लिए सरल कसौटियां देती है। पाठक उद्देश्य को स्पष्ट करने, ग्राहक से जल्दी सीखने, प्राथमिकताओं को मैट ढांचे में बांधने, पिच को संक्षिप्त बनाने और समर्थक समुदाय विकसित करने के व्यावहारिक तरीके पा सकता है। निवेश, स्वामित्व और प्रस्तुति पर इसकी चर्चा विशेष रूप से उन उपक्रमों के लिए प्रासंगिक है जो बड़े स्तर पर बढ़ना या पूंजी जुटाना चाहते हैं। इसलिए बहुत छोटे, स्थानीय या पूरी तरह गैर व्यावसायिक प्रयासों के पाठकों को कुछ उदाहरण अपने संदर्भ में ढालने पड़ सकते हैं। अनुभवी उद्यमियों को कई विचार परिचित और व्यापक लग सकते हैं क्योंकि पुस्तक हर विषय में गहराई से विशेषज्ञ स्तर की तकनीक नहीं देती। फिर भी यही इसकी अलग पहचान भी है। अनेक स्टार्टअप पुस्तकें या तो रणनीति को अत्यधिक सैद्धांतिक बनाती है या केवल धन जुटाने पर केंद्रित रहती है। कावासाकी उद्देश्य, उत्पाद, टीम, बिक्री, संचार और प्रचार को एक आरंभिक परिचालन ढांचे में जोड़ते हैं। अद्यतन संस्करण पुराने उद्यमिता सिद्धांतों को सोशल मीडिया, क्राउडफंडिंग और क्लाउड जैसी बदली हुई व्यावसायिक परिस्थितियों से जोड़ता है। परिणामतः यह किसी एक उत्तर का दावा नहीं करती बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने और तेजी से वास्तविक प्रमाण जुटाने की कार्य पद्धति देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गाय कावासाकी गाय कावासाकी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।